SBS हिंदी।
सबसे पहले मुख्य समाचार। आज शाम 5 बजे तक न्यूजीलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट में मारे गए 2 ऑस्ट्रेलियाई लोगों की पहचान हुई। भारत में विवादित नागरिकता संशोधन बिल की आज राज्यसभा में परीक्षा और रूस पर ओलंपिक में भाग लेने पर प्रतिबंध। और अब समाचार विस्तार से। न्यूजीलैंड के व्हाइट आइलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना में मारे गए 2 ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों की पहचान कर ली गई है। ये ब्रिस्बेन में रहने वाली महिला जूली रॉबर्ट्स और उनकी 20 साल की बेटी जेसिका हैं। न्यूजीलैंड पुलिस ने उनके परिवार वालों को उनके शव मिलने की सूचना दी है। क्षेत्रीय दमकल सेवा ने पुष्टि की है कि आग की अब तक की घटनाओं में न्यू साउथ वेल्स में 720 घर तबाह हो गए हैं। हालांकि दक्षिण की ओर चलने वाली हवाएं तापमान कुछ कम कर रही हैं, लेकिन अभी भी राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में खतरे का स्तर काफ़ी ज़्यादा है। मंगलवार को हालात काफ़ी बदतर थे, जब न केवल राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में धुएं ने उनको अपनी गिरफ्त में ले लिया था, बल्कि बढ़े हुए तापमान ने भी मुश्किलें बढ़ा दी थीं। मौसम विभाग का कहना है कि हालांकि तापमान में गिरावट आई है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में धुएं से निजात मिलनी मुश्किल लग रही है। उत्तर पश्चिम न्यू साउथ वेल्स के साथ उत्तरी ढलान और केंद्रीय पर्वतीय क्षेत्रों में आग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध जारी है। न्यू साउथ वेल्स के या पार्टी के जो एक वरिष्ठ सदस्य हैं, उनकी आलोचना मिलने के बाद उप प्रधानमंत्री माइकल मैककॉर्मक ने जलवायु परिवर्तन पर गठबंधन के दृष्टिकोण का बचाव किया है। पर्यावरण मंत्री मैट कीन ने ऑस्ट्रेलिया में आग की बेतहाशा घटनाओं को जलवायु परिवर्तन से जोड़ते हुए कहा कि जो भी हो रहा है वो सामान्य नहीं है, इसके लिए कुछ नहीं करना कोई विकल्प नहीं हो सकता। श्री मैककॉर्मक ने कहा कि वो समझते हैं कि लोग जलवायु परिवर्तन के बारे में क्यों चिंतित हैं, लेकिन वो मानते हैं कि इस मुद्दे को सही परिप्रेक्ष्य में रखना महत्वपूर्ण है।
Yes, we do need to address climate change, and we're doing that, but we're doing it in a practical, responsible way, without smashing up the economy, without making electricity and power prices unaffordable for average, everyday Australian families and households.
बाल यौन शोषण पर शाही आयोग के प्रमुख ने कैथोलिक नेताओं पर बच्चों के यौन उत्पीड़न को अपराध के तौर पर मान्यता देने में विफल रहने के आरोप लगाते हुए उनकी निंदा की है। शाही आयोग के बारे में पहली बार बोलते हुए जस्टिस पीटर मैकलेन ने कहा कि उन कैथोलिक चर्च के नेताओं की वो आलोचना करते हैं जो कि बाल यौन शोषण को आपराधिक गुनाह बताने के बजाय उसे नैतिक विफलता करार देते हैं। उन्होंने कहा कि बाल यौन शोषण से बचे लोगों के लिए राष्ट्रीय निवारण योजना पर हस्ताक्षर में देरी से भी वो निराश हैं।
I cannot comprehend how any person, much less one with qualifications in theology and very often further qualifications from recognized universities, could consider the rape of a child to be a moral failure, but not a crime.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेट्स द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों का जवाब देने के लिए महाभियोग प्रक्रिया के सीनेट परीक्षण चरण के पूरा होने की प्रतीक्षा करेंगे। श्री ट्रंप पर अपने कार्यालय का दुरुपयोग और कांग्रेस को बाधित करने का आरोप है। इन आरोपों के चलते वो अमेरिकी इतिहास में चौथे ऐसे राष्ट्रपति हो गए हैं जो महाभियोग का सामना करेंगे। अगर सदन में महाभियोग का मत पास हो जाता है तो रिपब्लिकन्स द्वारा नियंत्रित सीनेट में उनका ट्रायल होगा, जो जनवरी में शुरू हो सकता है। व्हाइट हाउस के प्रधान उप प्रेस सचिव होगन गिडले ने महाभियोग की प्रक्रिया को अनुचित बताया है।
The president's eager to get his story out, as he usually is, because he's done nothing wrong, despite Democrats moving forward without proof, without evidence. And look, this has all been predetermined. Let's be very clear. Before we released the transcript, Nancy Pelosi said we're moving forward with impeachment. Then we got a letter from Jerry Nadler saying, I want you to cooperate and do these things. Before we responded, she said we're moving forward with impeachment. So this was predetermined from the outset.
और अब खबरें भारत से। भारत की लोकसभा में पास होने के बाद नागरिकता संशोधन बिल आज राज्यसभा में उसकी परीक्षा है। हालांकि यहां इसे पास कराना नरेंद्र मोदी सरकार के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि राज्यसभा में एनडीए के पास बहुमत नहीं है। उस पर शिवसेना जैसी कुछ पार्टियों का रुख भी इस बिल के मामले में महत्वपूर्ण होगा। अभी राज्यसभा में सांसदों की कुल संख्या 240 है, यानी 121 सांसद बिल पास कराने के लिए चाहिए। एनडीए के पास 116 सांसदों का समर्थन है। बीजेडी के 7 सांसद बिल के समर्थन में वोट कर सकते हैं। वाईएसआर कांग्रेस के 2 सांसद भी बिल का समर्थन कर सकते हैं, यानी एनडीए को 125 सांसदों का समर्थन मिलता दिख रहा है। लेकिन बीजेडी ने बिल में संशोधन की मांग की है और जेडीयू में भी अंदरूनी मतभेद दिख रहा है। बीजेपी की पूर्व सहयोगी शिवसेना ने लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन किया है। हालांकि अब खबर है कि इस बात से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी नाराज हैं और उन्होंने महाराष्ट्र में गठबंधन से निकलने की धमकी दी है। इस पर शिवसेना नेता संजय राउत का बयान आया है कि कल जो लोकसभा में हुआ वो भूल जाइए। उधर पत्रकारों से बातचीत में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब तक सभी चीज़ें स्पष्ट नहीं हो जाती हम राज्यसभा में बिल का समर्थन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई नागरिक इस बिल की वजह से डरा हुआ है तो उसका शक दूर होना चाहिए। हालांकि लोकसभा में बिल पेश होने से पहले भी शिवसेना ने बिल की आलोचना की थी लेकिन फिर पक्ष में वोट दिया था। नागरिकता संशोधन बिल को लेकर एनडीए में बीजेपी की सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के अंदर से भी विरोध के स्वर सुनाई देने लगे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पवन वर्मा ने कहा कि उनकी पार्टी के अंदर उन्हें अपनी बात कहने का हक है और वो अपने नेता नीतीश कुमार से अनुरोध करते हैं कि वो नागरिकता संशोधन बिल पर उनके समर्थन के फैसले पर दोबारा विचार
करें। Urged our national president, Mr. Nitish Kumar, to reconsider the party's stand. It is my considered view that the bill is unconstitutional, it is discriminatory on deciding on citizenship on the basis of religion, and it is against the spirit of secularism, unity and harmony in the country.
इससे पहले पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के इस फैसले पर सवाल उठाए थे। हालांकि पहले जीडीयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में खुद नीतीश कुमार ने भी इस बिल का विरोध किया था। नागरिकता संशोधन बिल का पूर्वोत्तर राज्यों में भी पुरजोर विरोध हो रहा है। असम में कई दिनों से विरोध प्रदर्शन जारी हैं। त्रिपुरा में भी विरोध चरम पर है। विधेयक के खिलाफ छात्र संघों और वाम लोकतांत्रिक संगठनों ने मंगलवार को पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सड़क अवरुद्ध होने के कारण अस्पताल ले जाते समय 2 महीने के एक बीमार बच्चे की मौत हो गई। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल के पुतले भी जलाए। निर्भया बलात्कार मामले के दोषियों में से एक अक्षय कुमार सिंह ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट में फांसी की सजा के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की है। याचिका में दलील दी गई है कि दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है, दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है, साथ ही यहाँ का पानी जहरीला हो चुका है। ऐसे में जब खराब हवा और पानी के चलते उम्र पहले से ही कम होती जा रही है तो फिर फांसी की सज़ा की ज़रूरत क्यों। बता दें कि 9 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप मामले में 3 दोषियों की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी। चौथे आरोपी अक्षय ने अब तक पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं की थी। हालांकि पहली 3 याचिकाएं कोर्ट खारिज कर चुका है। अब डॉलर का हाल। आज यानी बुधवार को यह खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 48.24 रुपये और अमेरिकी डॉलर की तुलना में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 68 सेंट्स थी। और अब खबरें खेल के मैदान से। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने सोमवार को रूस पर टोक्यो ओलंपिक 2020 और बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 सहित वैश्विक खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वाडा ने रूस पर एक डोपिंग रोधी प्रयोगशाला से गलत आंकड़े देने के आरोप लगाए हैं। वाडा के कार्यकारी समिति की एक बैठक में यह फैसला लिया गया। इस फैसले का मतलब है कि रूसी खिलाड़ी अब टोक्यो ओलंपिक में केवल तटस्थ खिलाड़ी के तौर पर ही भाग ले सकते हैं, लेकिन ऐसा तभी संभव हो पाएगा जबकि वो साबित करें कि वो वाडा द्वारा प्रतिबंधित डोपिंग व्यवस्था का हिस्सा नहीं थे। दक्षिण एशियाई खेलों में भारत ने कुश्ती के अलावा मुक्केबाजी में भी शानदार प्रदर्शन किया है। इन खेलों में भारत के खाते में 12 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक आया। मंगलवार को भारतीय मुक्केबाज विकास कुमार ने पाकिस्तान के गुलजायब को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं महिला मुक्केबाज पिंकी रानी ने भी स्वर्ण पदक जीता है। अब डालते हैं नज़र कल यानी गुरुवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। शुरुआत पर्थ से। पर्थ में गुरुवार का दिन बेहद गर्म रहने वाला है। तेज धूप के बीच यहां अधिकतम तापमान 39 डिग्री न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में दोपहर के बाद धूप रहने के आसार हैं। अधिकतम तापमान 24 डिग्री जबकि न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान 19 डिग्री न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। देश की राजधानी कैनबरा में भी बादलों की आवाजाही रहेगी। अधिकतम तापमान 29 डिग्री जबकि न्यूनतम 12 डिग्री रह सकता है। सिडनी में भी कल धुआं रहने के आसार हैं। यहाँ अधिकतम तापमान 23 डिग्री जबकि न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ब्रिस्बेन में तूफान के साथ बारिश के आसार हैं। अधिकतम तापमान 33 डिग्री जबकि न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। डार्विन में बारिश के आसार हैं। दोपहर बाद यहां पर तूफान की भी आशंका है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री जबकि न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि दोपहर बाद हल्की बारिश के भी आसार हैं। अधिकतम तापमान 19 डिग्री न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। समाचारों में आज इतना ही।
sbs.com.au/hindi पर जाएं और ऐसे अंश का आपकी भाषा में आनंद उठाएं।